एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जो सपनों और विज्ञान का एक बहुत ही अनोखा संगम है। मैरी रोज की किताब पैकिंग फॉर मार्स द क्यूरियस साइंस ऑफ लाइफ इन द वॉइड।
हाँ, अंतरिक्ष यात्रा सुनते मन में कैसे हीरो एस्ट्रोनॉट्स, चमकते रॉकेट्स और मंगल ग्रह की वो लाल मिट्टी, ये सब तस्वीरें उभर आती हैं ना?
बिल्कुल।
लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे की कहानी क्या है? मतलब जब इंसान अपने इस छोटे से ग्रह की सीमाओं को लांघकर उस अनंत शून्य में कदम रखता है तो उसके शरीर और दिमाग पर असल में क्या बीतती है?
सही बात है। और ये आज इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अब सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि कई प्राइवेट कंपनियां भी मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने के, आप कह सकते हैं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं।
हाँ, सुन तो रहे हैं।
पर ये किताब हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा चैलेंज शायद शक्तिशाली रॉकेट बनाना नहीं है।
अच्छा,
तो फिर क्या है?
बल्कि उस रॉकेट में जाने वाले इंसान को जिंदा रखना, स्वस्थ रखना और शायद सबसे मुश्किल मानसिक रूप से ठीक रखना है। ये उन अनकही थोड़ी अनदेखी सच्चाइयों की पड़ताल है।
हाँ, तो बात शुरू करते हैं लेखिका मैरी रोज से। दिलचस्प बात यह है कि वो कोई रॉकेट साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट नहीं है। एक्चुअली वो एक जानी मानी अमरीकी विज्ञान पत्रकार और लेखिका हैं जिनका अंदाज ही मतलब बहुत अलग है।
हाँ, उनका अंदाज वो विज्ञान के उन कोनों में झांकने के लिए मशहूर है जहाँ आमतौर पर लोग जाने से कतराते हैं, है ना?
बिल्कुल।
वो अजीब, कभी कभी थोड़ी झिझक पैदा करने वाले लेकिन बेहद जरूरी विषयों को उठाती हैं। और कमाल की बात यह है कि वो इसे इतने मजेदार, थोड़े ह्यूमरस और मानवीय ढंग से करती हैं कि आप पढ़ते हुए बोर नहीं होते बल्कि हैरान होते हैं और मुस्कुराते भी हैं।
उनकी पिछली किताबें ही देख लीजिए, जैसे स्टिफ जो मानव शवों के वैज्ञानिक उपयोगों पर थी, या फिर बॉन्क जो सेक्स के विज्ञान पर थी, या गल्प जो हमारे पाचन तंत्र की अजीबो करीब यात्रा पर थी।
सही है।
ये दिखाता है कि वो मुश्किल और थोड़े टैबू समझे जाने वाले विषयों को भी कितनी सहजता और जिज्ञासा से खंगाल सकती हैं।
और उनकी सबसे बड़ी खूबी मेरे ख्याल से वो सवाल पूछती हैं। वो ऐसे सवाल पूछती हैं जो शायद हमारे मन में आते तो हैं पर हम पूछते नहीं।
जैसे?
जैसे अंतरिक्ष में डकार लेने पर क्या होता है, या शून्य गुरुत्वाकर्षण में कोई रोए तो आंसू कहाँ जाते हैं। वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च नहीं करती, वो खुद प्रयोगों का हिस्सा बनती हैं, वैज्ञानिकों से मिलती हैं और एक आम इंसान की नज़र से हमें बताती हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है।
इसीलिए वो पैकिंग फॉर मार्स लिखने के लिए एकदम सही इंसान थी। उन्हें इंसानी शरीर की जटिलताओं, उसकी सीमाओं और उन सीमाओं को लांघने के लिए किए जाने वाले अजीबो गरीब जुगाड़ों में कह सकते हैं गहरी दिलचस्पी है।
हाँ,
वो हमें स्पेस सूट पहने हीरो की इमेज से परे ले जाकर उस इंसान से मिलवाती हैं जिसे पसीना आता है, जिसे उबकाई आती है और जिसे टॉयलेट भी जाना पड़ता है।
तो ये किताब असल में है क्या? क्या ये एक तरह का बिहाइंड द सीन्स टूर है अंतरिक्ष यात्रा का?
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये उन इंसानों की कहानी है जिन्हें महीनों सालों तक एक धातु के डिब्बे में बंद रहकर वो करना है जो सुनने में बड़ा रोमांचक लगता है पर असल में बेहद मुश्किल और कई बार तो बहुत बोरिंग भी होता है।
अच्छा, बोरिंग भी? ये तो सोचा नहीं था।
किताब का सेंट्रल आइडिया यही है कि अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने में असली बाधा टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारी अपनी बायोलॉजी और साइकोलॉजी है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, ये सब पृथ्वी के लिए बना है।
सही।
अंतरिक्ष में ले जाने पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैरी रोज इन्हीं सवालों की तह तक जाती हैं।
वो पूछती हैं, अच्छा शून्य गुरुत्वाकर्षण में बाथरूम कैसे इस्तेमाल करें, और अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बीमार पड़ जाए, उसे उल्टी आ जाए, खासकर अपने हेलमेट के अंदर, तो क्या होगा?
उफ़।
क्या सालों तक एक छोटी सी जगह में बंद कुछ लोग बिना एक दूसरे का गला दबाए रह सकते हैं? क्या अंतरिक्ष में सेक्स संभव है? अगर हाँ तो कैसे? ये सब सवाल।
तो ये किताब हमें दिखाती है कि अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ बड़े रॉकेट लॉन्च और लैंडिंग के बारे में नहीं है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी अजीब लगने वाली लेकिन कभी कभी जानलेवा बन सकने वाली समस्याओं को सुलझाने के बारे में भी है।
मतलब प्रैक्टिकल चीजें।
हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि जब टीवी कैमरे बंद हो जाते हैं तो अंतरिक्ष में जिंदगी महसूस कैसी होती है। इसमें ग्लैमर कम है और जुगाड़ ज्यादा है।
क्या बात है।
किताब हमें सबसे पहले ले जाती है अंतरिक्ष यात्री के चयन प्रक्रिया में। फिल्मों में तो दिखाते हैं कि बस फाइटर पायलट हो या सुपर फिट हो तो काफी है।
हाँ बिल्कुल, टॉप गन टाइप।
पर असलियत कहीं ज्यादा जटिल है। स्टारस्ट्रक जैसे अध्याय बताते हैं कि नासा हो या जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे जो हीरो बनना चाहते हों।
अच्छा, तो फिर कैसे लोग चाहिए?
वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका ईगो यानी अहंकार कम हो, जो धैर्यवान हो, टीम के साथ मिलकर काम कर सकें, और सबसे जरूरी, जो महीनों या सालों तक बेहद सीमित जगह में गिने चुने लोगों के साथ भयंकर तनाव और बोरियत के बावजूद अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकें।
हाँ, ये तो बहुत मुश्किल होगा। सोचिए, मंगल मिशन पर आप उन्हीं 3-4 लोगों के साथ सालों तक बंद रहेंगे।
बिल्कुल, अगर उनमें से किसी एक की भी आदत आपको बुरी लगने लगे या कहें नाक में दम करने लगे तो क्या होगा?
सही बात है, इसलिए मनोवैज्ञानिक मजबूती शायद शारीरिक मजबूती से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है।
बिल्कुल। फिर आता है अंतरिक्ष का पहला और शायद सबसे आम शारीरिक झटका, मोशन सिकनेस, जिसे वैज्ञानिक भाषा में स्पेस एडेप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं।
अच्छा, ये वही है जैसे कार या झूले में चक्कर आते हैं?
हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन अंतरिक्ष में ये ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स को होता है, कम से कम शुरुआती दिनों में तो होता ही है। मेरी रोच ने खुद इसका अनुभव लेने के लिए नासा के मशहूर वॉमिट कॉमेट में उड़ान भरी थी।
अरे हाँ, वो वॉमिट कॉमेट वाला किस्सा, वो हवाई जहाज जो ऊपर नीचे उड़कर कुछ सेकंड के लिए जीरो ग्रेविटी बनाता है।
वही। और रोच अपने अनुभव को बड़े ही मजेदार लेकिन ईमानदारी से बताती हैं, कैसे पेट में गड़बड़ होती है, कैसे जी मिचलाता है।
पर ये होता क्यों है अंतरिक्ष में?
ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आंखें देख रही हैं कि आप यान के अंदर स्थिर हैं, लेकिन कान के अंदरूनी हिस्से में जो बैलेंस बनाने वाला सिस्टम है ना, वेस्टिबुलर सिस्टम, वो बता रहा है कि आप गिर रहे हैं। इस गड़बड़ से दिमाग को चक्कर आने लगते हैं, जी मिचलाने लगता है।
और सोचिए, आप अरबों डॉलर के मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचे हैं, इतने जरूरी काम करने हैं और पहुंचते ही उल्टियां शुरू।
हाँ, ये न सिर्फ असुविधाजनक है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। तो एस्ट्रोनॉट्स इससे निपटते कैसे हैं? क्या कोई खास दवाइयाँ होती हैं या बस झेलना पड़ता है?
रोच बताती हैं कि हाँ, दवाइयाँ तो हैं लेकिन उनके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नींद आना वगैरह। ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स शुरुआती कुछ दिन इसे झेलते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर एडजस्ट कर लेता है।
अच्छा।
लेकिन ये शुरुआती कुछ दिन मिशन के लिए बहुत नाजुक हो सकते हैं। ये दिखाता है कि कितनी बुनियादी चीजें भी अंतरिक्ष में एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं।
अगला बड़ा मुद्दा है लाइफ इन अ कैन, मतलब एक टिन के डिब्बे में बंद जिंदगी।
हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS तो फिर भी काफी बड़ा है, लेकिन मंगल मिशन के यान शायद बहुत छोटे और सीमित होंगे। महीनों या सालों तक एक छोटी सी जगह में कुछ लोगों के साथ बंद रहना, उफ,
दम घुटने जैसा लगता है।
रोच ने मॉस्को में हुए मार्स 500 प्रयोग का जिक्र किया है।
हाँ हाँ, मार्स 500, वो कमाल का प्रयोग था। उसमें 6 लोगों के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रू ने 520 दिनों तक मॉस्को में बने एक नकली अंतरिक्ष यान मॉड्यूल में बंद रहकर बिताया।
520 दिन, बाप रे।
हाँ, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं सिवाय मिशन कंट्रोल के। इसका मकसद यही देखना था कि इतने लंबे आइसोलेशन का इंसान के शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है।
और नतीजे कैसे थे, कुछ पता चला?
नतीजे चौंकाने वाले थे। रोच बताती हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें बड़ी लड़ाई का कारण बन सकती हैं। किसी के खर्राटे लेने की आदत, किसी का खाना चबाने का तरीका, कौन कितनी देर बाथरूम इस्तेमाल करता है।
अरे हाँ, जब आप 24 घंटे एक ही जगह बंद हो और भागने का कोई रास्ता ना हो, तो ये छोटी बातें भी पहाड़ बन सकती हैं।
बिल्कुल। क्रू के बीच तनाव, नींद की समस्या, डिप्रेशन जैसी चीजें सामने आई।
तो ये दिखाता है कि मंगल मिशन की सफलता सिर्फ इंजीनियरिंग पे नहीं बल्कि मनोविज्ञान और समाज शास्त्र पर भी उतनी ही निर्भर करेगी।
हाँ, क्रू का चयन करते वक्त सिर्फ उनका स्किल नहीं बल्कि उनकी आपसी कंपैटिबिलिटी, उनका धैर्य, उनकी तनाव झेलने की क्षमता, ये सब परखना होगा। मतलब रॉकेट साइंस जितनी ही जरूरी है पीपल साइंस।
अच्छा, और अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर स्पेस एजेंसियां बात करने से सबसे ज्यादा कतराती हैं, अंतरिक्ष में सेक्स।
ओह हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो जिज्ञासा तो बहुत जगाता है पर जिसके बारे में ठोस जानकारी शायद बहुत कम है।
मैरी रोच इसे भी अपने अनोखे अंदाज में खंगालती हैं। वो पूछती हैं, क्या शून्य गुरुत्वाकर्षण में शारीरिक संबंध बनाना संभव है? अगर हाँ, तो क्या उसमें कोई मैकेनिकल चुनौतियां होंगी? सोचिए, न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ कैसे लागू होगा?
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
और उससे भी बड़ा सवाल, क्या शून्य गुरुत्वाकर्षण में गर्भाधान हो सकता है? अगर हो जाए तो भ्रूण का विकास सामान्य रूप से होगा या उस पर गुरुत्वाकर्षण की कमी का असर पड़ेगा?
इन सवालों के जवाब तो शायद अभी किसी के पास नहीं होंगे।
अभी तक तो ज्यादातर अटकलों या जानवरों पर किए गए कुछ शुरुआती प्रयोगों पर ही आधारित है। मिशन प्लानर्स के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर जब हम सालों लंबे मंगल मिशन या स्पेस कॉलोनीज की बात करते हैं।
सही।
रोज दिखाती हैं कि ये सिर्फ एक चटपटा सवाल नहीं है, बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक संवेदनशील बायोलॉजिकल और एथिकल पहेली है।
चलिए अब कुछ रोजमर्रा की लेकिन बेहद जरूरी चीजों पर आते हैं, जैसे कि स्वच्छता। अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे काम करता है? ये सवाल मेरे मन में हमेशा आता था।
और जवाब काफी दिलचस्प है, क्योंकि पानी तो नीचे बहता नहीं है ना।
हाँ।
तो फ्लश वाला सिस्टम तो काम करेगा नहीं। अंतरिक्ष के टॉयलेट हवा के सक्शन यानी खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं ताकि सब कुछ सही दिशा में जाए और यान में तैरता ना फिरे।
अच्छा, मतलब वैक्यूम क्लीनर जैसा कुछ।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। रोज इसके डिजाइन की चुनौतियों और एस्ट्रोनॉट्स के अनुभवों को बड़े मजेदार ढंग से बताती हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर एक भरोसेमंद टॉयलेट सिस्टम मिशन की सफलता के लिए बेहद जरूरी है।
और नहाने का क्या? बिना शावर के महीनों कैसे रहते हैं?
उसके लिए भी खास जुगाड़ है। बिना पानी वाले शैम्पू, खास तरह के साबुन वाले स्पंज और तौलिए जिनसे शरीर पोंछ लिया जाता है।
अरे वाह।
और क्योंकि हवा रिसाइकल होती है, इसलिए शरीर की गंध को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्रू के स्वास्थ्य और मनोबल के लिए इनका महत्व बहुत बड़ा है।
सही कहा। अब खाने की बात करते हैं। शुरुआत में तो वो ट्यूब वाला पेस्ट जैसा खाना होता था।
हाँ, शुरुआत में तो वैसा ही था, जो शायद ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता होगा, लेकिन अब ISS पर मेन्यू काफी बदल गया है। उसमें कई तरह के व्यंजन होते हैं।
अच्छा।
हाँ, लेकिन चुनौतियां अब भी हैं। एक तो ये कि खाना ऐसा होना चाहिए जिसके टुकड़े ना हो और वो हवा में तैरकर नाजुक उपकरणों में ना फंस जाए।
हाँ, ये तो लॉजिकल है।
और दूसरी दिलचस्प बात जो रोच बताती हैं, वो ये कि अंतरिक्ष में स्वाद बदल जाता है।
सच में? कैसे?
शून्य गुरुत्वाकर्षण में शरीर का तरल पदार्थ जैसे खून और पानी पैरों की तरफ जाने के बजाय ऊपर सिर की तरफ ज्यादा जमा हो जाता है। इससे चेहरा थोड़ा फूला हुआ लगता है और नाक बंसी महसूस होती है, ठीक वैसे ही जैसे जुकाम में होता है।
अच्छा, ओके।
और जब नाक बंद हो तो खाने का स्वाद फीका लगता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स अक्सर ज्यादा मसालेदार खाना पसंद करते हैं।
वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है।
और खाने से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती है लंबे मिशनों के लिए क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाना।
क्लोज्ड लूप सिस्टम मतलब
ऐसा सिस्टम जो यात्रियों के मल मूत्र, पसीने और सांस की नमी को रिसाइकल करके पीने का पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बना सके।
ओह, रिसाइकलिंग।
हाँ, ISS पर पानी रिसाइकल करने का सिस्टम पहले से काम कर रहा है। ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे।
हाँ, थोड़ा तो है,
लेकिन मंगल जैसे मिशन के लिए ये अनिवार्य होगा, क्योंकि पृथ्वी से इतना सारा पानी ले जाना संभव नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे जरूरतें हमें अद्भुत टेक्नोलॉजी विकसित करने पर मजबूर करती हैं।
अब बात करते हैं शरीर पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के सीधे असर की। ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल स्थिति नहीं है, और इसका असर बहुत गहरा होता है।
क्या असर होता है?
मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम ही नहीं करना पड़ता। सोचिए, अगर हम दिन भर कुर्सी पर बैठे रहें तो पैर कैसे सुस्त हो जाते हैं? अंतरिक्ष में तो ये पूरे शरीर के साथ होता है।
और हड्डियां, उनका क्या?
हड्डियों का घनत्व, वो भी तेजी से कम होने लगता है, जैसे बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में होता है। शरीर को लगता है कि अब मजबूत हड्डियों की जरूरत नहीं है, तो वो कैल्शियम छोड़ने लगता है।
अरे बाप रे, तो इसका उपाय क्या है?
इसीलिए ISS पर एस्ट्रोनॉट्स को रोजाना कई घंटे कसरत करनी पड़ती है, ट्रेडमिल पर दौड़ना, वजन उठाना, ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां काम करती रहें, एक्टिव रहें।
और पृथ्वी पर वैज्ञानिक इसका अध्ययन करने के लिए वो बेड रेस्ट स्टडीज करते हैं ना?
हाँ, बिल्कुल। इसमें वॉलंटियर्स को हफ्तों या महीनों तक बिस्तर पर लिटा दिया जाता है, अक्सर सिर थोड़ा नीचे करके, ताकि शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों की नकल की जा सके। मैरी रोच इनमें से कुछ स्टडीज के बारे में भी बताती हैं।
ये दिखाता है कि अंतरिक्ष की चुनौतियों को समझने के लिए पृथ्वी पर कितने प्रयोग करने पड़ते हैं। अच्छा, अब यान से बाहर निकलकर काम करना, यानी स्पेस वॉक या EVA, फिल्मों में तो बड़ा कूल लगता है।
हाँ, बहुत कूल लगता है, लेकिन असलियत में ये बेहद थका देने वाला और खतरनाक काम है। स्पेस सूट कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो अपने आप में एक छोटा सा स्पेसशिप है जो एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखता है।
क्या क्या करता है वो सूट?
अरे, वो ऑक्सीजन देता है, सही तापमान बनाए रखता है, रेडिएशन से बचाता है और शरीर पर दबाव बनाए रखता है, लेकिन वो बहुत भारी, सख्त और पहनने में मुश्किल होता है।
अच्छा।
कल्पना कीजिए कि एक फूले हुए अकड़े हुए सूट के अंदर दस्ताने पहनकर छोटे छोटे नट बोल्ट्स कसने की कोशिश करना, इसमें जबरदस्त मेहनत लगती है।
हाँ, मुश्किल होगा।
और हमेशा डीकम्प्रेशन सिकनेस यानी द बेंड्स का खतरा बना रहता है, जैसा गहरे समुद्र में गोताखोरों को होता है अगर सूट के अंदर और बाहर के दबाव में तेजी से बदलाव हो।
और फिर वो सवाल आता है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मिशन प्लानर्स को सोचना पड़ता है।
कौन सा सवाल?
अगर मंगल जैसे लंबे मिशन के दौरान किसी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो जाए तो
क्या होगा?
ये एक बेहद मुश्किल नैतिक और लॉजिस्टिक सवाल है।
उफ, हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। क्या करेंगे, शव को अंतरिक्ष में छोड़ देंगे?
वो शायद नैतिक रूप से सही नहीं होगा, और इससे दूसरे ग्रहों के दूषित होने का खतरा भी है। हमारे शरीर में अरबों बैक्टीरिया होते हैं।
हाँ, सही है। तो यान में रखेंगे
शव को? महीनों या सालों तक छोटे से यान में बाकी क्रू के साथ रखना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से कितना भयानक होगा, और जगह की भी कमी होगी।
तो फिर कोई समाधान है?
रोज कुछ संभावित समाधानों पर चर्चा करती हैं। उनमें से एक है बॉडी बैग, जिसे यान के बाहर लगाकर शव को फ्रीज ड्राई यानी बर्फ में सुखा दिया जाए।
फ्रीज ड्राई सुनने में भयावह लगता है।
है तो, लेकिन ये दिखाता है कि अंतरिक्ष यात्रा की योजना बनाते समय हर संभव स्थिति के बारे में सोचना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो।
ठीक है, लेकिन इतनी सारी मुश्किलों, परेशानियों और अजीब बातों के बाद किताब एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे अनुभव पर आकर रुकती है, ओवरव्यू इफेक्ट।
ओवरव्यू इफेक्ट, ये क्या है?
ये वो खास एहसास है जो लगभग हर अंतरिक्ष यात्री को होता है जब वो अंतरिक्ष की ऊंचाई से हमारी पृथ्वी को देखता है।
अच्छा, कैसा एहसास?
कल्पना कीजिए, नीचे एक छोटा सा नाजुक नीला और सफेद गोला तैर रहा है उस काले अनंत अंतरिक्ष में। उस पर कोई देशों की सीमाएं नहीं दिखती, कोई झगड़े नहीं दिखते, बस एक सुंदर, एक अकेला ग्रह।
वाह,
ये नजारा एस्ट्रोनॉट्स में पृथ्वी के प्रति, पूरी मानवता के प्रति एक गहरा जुड़ाव, एक प्रोटेक्टिवनेस की भावना पैदा करता है। उन्हें एहसास होता है कि यह हमारा एकमात्र घर है और हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी है।
तो शायद यही वो इनाम है जो अंतरिक्ष यात्रा की सारी कठिनाइयों को झेलने लायक बनाता है।
हाँ, शायद यही। तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए पहली और सबसे बड़ी सीख यही है, भाई, इंसानी शरीर ही असली फ्रंटियर है, असली चुनौती है।
हाँ।
हम रॉकेट बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को पृथ्वी के बाहर जिंदा और स्वस्थ रखना ही सबसे मुश्किल काम है। हमारी पूरी बायोलॉजी जैसे अंतरिक्ष के खिलाफ विद्रोह करती है।
बिल्कुल। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी, वो है अंतरिक्ष यात्री के हीरो वाले मिथक के पीछे की साधारण रोजमर्रा की सच्चाई। असली हीरोइज्म शायद उस रॉकेट लॉन्च के धमाके में नहीं,
तो किसमें है?
बल्कि महीनों तक एक ही बोरिंग खाना खाने में, खराब टॉयलेट को झेलने में, और अपने साथी की छोटी छोटी आदतों से चिढ़ने के बावजूद पेशेवर बने रहने में है। ये रोजमर्रा की छोटी लड़ाइयां हैं जो असली परीक्षा लेती हैं।
तीसरी बात, कैसे अत्यधिक जरूरतें अद्भुत किस्म की सरलता और जुगाड़ को जन्म देती हैं।
हाँ, जुगाड़।
चाहे वो पेशाब से पीने का पानी बनाना हो या ऐसा खाना डिजाइन करना हो जिसके टुकड़े हवा में न उड़े, ये दिखाता है कि इंसान कितने क्रिएटिव हो सकते हैं जब उनके सामने बड़ी बाधाएं हों। भारत में हम जुगाड़ को अच्छे से समझते हैं, ये उसका स्पेसेज वर्जन है।
बिल्कुल सही। चौथी, मनोविज्ञान का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। मंगल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मशीनें ठीक होना काफी नहीं है। मशीनों को चलाने वाले इंसानों का दिमाग ठीक होना, उनका आपस में तालमेल होना उतना ही जरूरी है। टीम डायनेमिक्स, मानसिक स्वास्थ्य, ये शायद मिशन की सफलता या असफलता तय करेंगे। ये बात तो हमारे दफ्तरों और घरों में भी लागू होती है ना?
हाँ, बिल्कुल लागू होती है। और पांचवी बात जो मेरी रोज की शैली से उभरती है, गंभीर विज्ञान को भी हास्य, मानवीयता और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझा जा सकता है। वो दिखाती हैं कि विज्ञान कोई डरावनी या बोरिंग चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी, हमारे अपने शरीर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। वो हमें हंसाते हुए सोचने पर मजबूर करती हैं। किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, जैसे ये सोचना कि अंतरिक्ष ऐसी जगह है जिसके बारे में आप तब तक पूरी तरह जान ही नहीं सकते जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं।
सही है।
ये हमें याद दिलाता है कि हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, अंतरिक्ष हमेशा हमें चौंका सकता है। इसमें एक अनिश्चितता और जोखिम हमेशा रहेगा।
हाँ, और वो नजरिया कि इंजीनियरों के लिए इंसान एक नाजुक तरल पदार्थ से भरा थैला है जिसे लगातार सही तापमान, दबाव और सहारे की जरूरत होती है।
ये सुनने में मजाकिया लगता है, पर यह दिखाता है कि मिशन डिजाइन करने वालों के लिए इंसानी शरीर ही सबसे मुश्किल और नाजुक पुर्जा है, जिसे हर हाल में ठीक रखना है। ये भी एक जरूरी बात है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ कुछ हीरो एस्ट्रोनॉट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और यहाँ तक कि उन स्वयंसेवकों की कहानी है जो बेड रेस्ट स्टडीज में लेटते हैं।
सही कहा।
ये लगातार कोशिश करने, गलतियां करने और उनसे सीखने की कहानी है।
और अंत में वो ओवरव्यू इफेक्ट वाला एहसास, जब आप पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं एक छोटे नाजुक नीले गोले के रूप में, तो ये एहसास कि ये एक ग्रह है, हम सब इसी पर हैं और यही हमारा एकमात्र घर है, ये शायद अंतरिक्ष यात्रा का सबसे गहरा और उम्मीद जगाने वाला पहलू है।
अब सवाल उठता है कि ये सब अंतरिक्ष की बातें, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल। पहली चीज तो यही है, सीमित संसाधनों में क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना।
हाँ, जैसे वो जुगाड़ वाली बात।
हाँ, जैसे अंतरिक्ष में हर बूंद पानी कीमती है, वैसे ही हमें पृथ्वी पर भी अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना होगा। कम में ज्यादा वाली सोच।
सही बात है। और दूसरी सीख है टीम वर्क में मनोविज्ञान का महत्व। चाहे ऑफिस की टीम हो, घर परिवार हो या दोस्तों का ग्रुप, सिर्फ लोगों का हुनर काफी नहीं होता। उनका आपस में तालमेल, एक दूसरे को समझने की क्षमता, मुश्किल समय में साथ देने का जज्बा, ये सब बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव हमें सिखाते हैं कि आइसोलेशन और तनाव में भी रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं।
शायद अपनी पृथ्वी के प्रति थोड़ी ज्यादा कद्र करना। जब हम ओवरव्यू इफेक्ट के बारे में सुनते या पढ़ते हैं, तो शायद हमें भी एहसास हो कि हमारा ये ग्रह कितना अनमोल और नाजुक है। शायद हम अपने आसपास के पर्यावरण का थोड़ा और ख्याल रखने लगे।
बिल्कुल। एक और बात, उन कामों का सम्मान करना जो ग्लैमरस नहीं लगते पर बेहद जरूरी हैं।
हाँ, ये जरूरी है।
जैसे मैरी रोच स्पेस टॉयलेट डिजाइन करने वालों या बेड रेस्ट स्टडी में हिस्सा लेने वालों के काम को महत्व देती हैं, वैसे हमें भी याद रखना चाहिए कि हर बड़ी सफलता के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे अनदेखे काम करने वाले लोगों का हाथ होता है। सफाई कर्मचारी से लेकर खाना बनाने वाले तक, सबका योगदान जरूरी है।
मेरे लिए इस किताब और हमारी इस चर्चा का सबसे यादगार पहलू ये है कि कैसे मेरी रोच विज्ञान की जटिल, तकनीकी और कभी कभी थोड़ी घिनौनी लगने वाली बातों को भी इतने मानवीय, मजेदार और सुलभ तरीके से पेश करती हैं।
हाँ, ये उनकी खूबी है।
वो हमें एहसास दिलाती हैं कि विज्ञान सिर्फ लैब कोट और मुश्किल समीकरणों के बारे में नहीं है, वो हमारे अपने शरीर, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।
और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली बात यह है कि ये किताब दिखाती है कि इंसान अपनी जैविक सीमाओं को लांघने के लिए क्या कुछ करने को तैयार है, कितनी सरलता, कितनी दृढ़ता और कितना अजीबोगरीब जुगाड़।
हाँ,
ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं, ये इंसान के लचीलेपन, उसकी जिज्ञासा और उसके कभी हार ना मानने की जिद की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।